बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लेव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है। इससे पहले कि हम इसका अध्ययन आरंभ करें, आइए सुनते हैं एक गीत।
पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की निकटता में कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद तक देखे थे और आज हम अपने अध्ययन को उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पूर्व कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिताजी, हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो आज आपके जीवित वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, उनके हृदय को, कानों और विचारों को खोलें, ताकि प्रभु वे आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। हम सबको आप अपने निकटतम बनाए रखें। जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश में हैं, परेशानी में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। धन्यवाद देते हैं पिताजी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 से 8 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है, और सापान जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है, और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है, और सुअर जो चीरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मित्रों, यह अशुद्ध पशुओं की एक और सूची है। स्पष्ट है कि जानवरों के विषय में कई प्रश्न रहे होंगे। केवल वनस्पति खाने वाले जानवर ही पागुर करते हैं, इसमें से सब मांसाहारी हटाए गए हैं। मित्रों, परमेश्वर ने ऊंट न खाने की चेतावनी दी। प्रतिक्रिया होगी, कौन ऐसा करना पसंद करेगा? क्या आप नहीं सोचते कि प्रभु के फरीसियों से कहे गए शब्द, तुम मच्छर छानते पर ऊंट निगल जाते हो, पर एक उपहास है? ऊंट न केवल लंगड़ाता था परंतु गंदा भी था। सापान खरगोश की तरह होता है और चट्टानों में निवास करता है, हमारे खरगोश की तरह का होता है। मुझे यह बात मजेदार लगती है कि आज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन खरगोश को नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात कोई नहीं करता। सुअर के खुर फटे होते हैं पर वह जुगाली अर्थात पागुर नहीं करता। सुअर लगातार खाता तो रहता है परंतु पागुर नहीं करता। यह भी दिलचस्प है कि सुअर का मांस पचाने में कठिन है। यह गंदा पशु भी है, अपनी खाने की आदतों के कारण उसे बहुत गंदा मानते हैं। मित्रों, इस्राएली लोगों को इन अशुद्ध पशुओं की लोथ से भी दूर रहने की आज्ञा दी गई थी। इनके धार्मिक महत्व को टाला नहीं जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 9 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुन्द्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो, और जलचारी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मित्रों, यहाँ इनके बीच और जानवरों के बीच भी एक स्पष्ट चिन्ह रेखा खींच दी गई है। शुद्ध मछली पहचानने के लिए दो विशेष चिन्ह अवश्य दिखाई देना चाहिए। पहला है पंख और दूसरा है चोंटा अर्थात शल्क, जो शुद्धता की निशानी है। यह नियम समुद्री व दोनों प्रकार की मछलियों पर लागू होता है। जल में रेंगने वाले जंतुओं के खाने की मनाही है। जिसे पानी में रहने वाले कई जंतुओं को हटाया गया है अर्थात उनको खाने की सूची में नहीं रखा गया है। इनका उदाहरण नहीं दिया गया है क्योंकि यह विभेद बिल्कुल स्पष्ट है। मित्रों, मछली उत्पादन के लिए इसराइल को भूमध्य सागर, गलील की झील और यर्दन नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। मछली इस राष्ट्र का प्रमुख भोजन भी है। यरूशलेम का एक द्वार मछली द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भूमध्य सागर से मछली लाई जाती थी। और दिलचस्प बात तो यह है कि नहमिया के दिनों में यह एक समस्या थी। मछुआरे मछली तथा अन्य सामान विश्राम दिवस पर यरूशलेम में लाते थे और लोगों को बेचते थे। इसे हम नहमिया 13 अध्याय उसके 16 से 22 पद में पाते हैं। मित्रों, नए नियम के विद्यार्थियों को प्रभु यीशु की पृथ्वी पर सेवकाई के समय मछली उद्योग के महत्व का ज्ञान अवश्य होता है। हमारे प्रभु यीशु के प्रथम शिष्य भी मछुआरे थे। उनसे कहा गया कि उन्हें मनुष्यों के मछुए बनाना है। मित्रों, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले गए जाल के सदृश है जो अच्छी और बुरी तरह की मछलियों को बटोर लाता है। इसे हम मत्तयी सुसमाचार 13 अध्याय उसके 47 से 50 पद में पाते हैं। अच्छी और बुरी मछलियों को विभक्त करने में कौन सा तरीका काम में लाते थे? इसका आधार छोटी या बड़ी नहीं परंतु लेवी व्यवस्था के नियम के अनुसार होना था। एक मछली जिसके पंख और चोंटे हो वही शुद्ध या अच्छी मछली थी। धर्मी और दुष्ट के बीच न्याय में यह कैसे लागू होगा? अच्छा एक विश्वासी वो होता है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित और मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने होता है। दो चिन्ह पहचान के हैं, पंख और उसके चोंटे। अब हम आगे देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध उड़ने वाले पक्षी। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 13 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, हवासील, हड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगीदड़। मित्रों, पक्षियों में जानवरों और मछलियों के समान कोई दृश्य चिन्ह पहचान नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वे सभी अशुद्ध भोजन के भागीदार हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर मरे पशुओं अर्थात लोथ को खाने वाले पक्षी थे। फिलिस्तीन के अशुद्ध पक्षियों की सूची उपलब्ध है। यह एक अलग बात प्रकट करती है कि मूसा की व्यवस्था इसराइली राष्ट्र के लिए और फिलिस्तीन के विशिष्ट भूभाग के लिए बनी थी। इनमें से कई चिड़िया हमारे लिए अनजानी है। उनका वर्गीकरण उकाब और बाज, गिद्ध और कौवे, उल्लू और चमगीदड़, हंस और जलहंस से ली गई है। वे खाने में स्वादिष्ट भी नहीं लगते हैं। उन्हें अशुद्ध पक्षी उनके आहार अर्थात भोजन की वजह से कहा गया है। आजकल भी कई लोग इनमें से कई पक्षियों का सेवन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं खाना पसंद करूंगा वा नहीं, पर चाहे हम इन्हें खाएं अथवा नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांस परमेश्वर के सम्मुख हमें प्रशंसनीय नहीं ठहराएगा। इनकी मूल शिक्षा इसराइल को सिखाना था कि वह अंतर को समझे, उन्हें शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है इस विषय में निर्णय लेना था। मित्रों, आज हमारे लिए सबक है कि हम अपने चाल चलन व पेशे के लिए निर्णय लेना सीख लें। हमें ऐसे फैसले भी लेने हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करें अथवा नहीं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें व नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चाल चलें अथवा नहीं। यही हमारे जीवन के लिए इसका लागूकरण भी है। इस भाग में एलिय्याह के अनुभव पर कुछ प्रकाश डाला गया है। उसका भोजन कौवे लाते थे, अशुद्ध पक्षी, लेकिन एलिय्याह ने कौवे नहीं खाए परंतु कौवों ने उसे भोजन खिलाया। परमेश्वर के जन के लिए उसे नम्र करने वाला अनुभव रहा होगा, परंतु उसने हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब हम आगे देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 20 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जितने पंख वाले चार पांव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने की टांगे होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हकाब। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पंख वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मित्रों, आप मेरे भोजन सूची से इनको हटा सकते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि उनमें से कुछ शुद्ध भी हैं, विशेषकर चार प्रकार की टिड्डियां। टिड्डी सामान्य प्रजाति की है, गंजी टिड्डी के उभार होते हैं, भौंरा टिड्डी के उभार के साथ एक पूंछ भी होती है। ग्रास होपर टिड्डी के पूंछ तो होता है पर उभार नहीं होता। इस प्रकार के चार किस्म हैं। परंतु यदि आप मुझे दावत में बुलाते हैं तो व्यंजन सूची में कुछ और परोसिए, इसे नहीं। यद्यपि वे मुझे अच्छी नहीं लगती परंतु इसमें धार्मिक रूप से शुद्ध अशुद्ध कहना भी ठीक नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भोजन वचन के अनुसार था जब उसने टिड्डी और वन शहद खाया। आइए अब हम देखते हैं अशुद्ध जानवरों की लोथ से संपर्क। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 24 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे, जिस किसी से इनकी लोथ छुई जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चीरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मित्रों, इसराइल के लिए न केवल अशुद्ध पशुओं का मांस खाना वर्जित था परंतु उनके शव को भी छूना मना था। यह संपर्क से छुआछूत या संक्रामक होने का सिद्धांत लागू होता है। यह जीवन का एक महान सिद्धांत था जो इसराइल के बंधुआई से लौटने के उपरांत पुनः लागू हुआ। हगै की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजक से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हगै ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ अशुद्ध ठहरेगी। मित्रों, यहाँ हमारे लिए एक बहुत महान सिद्धांत है, शुद्धता व पवित्रता किसी संपर्क से अंतरित नहीं होते हैं। इसके विपरीत धूल पाप और अशुद्धता संपर्क से अंतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में अपवित्र में से पवित्रता लाना असंभव है, परंतु अशुद्धता शुद्धता पर प्रभाव डालती है। एक अधर्मी व्यक्ति धार्मिक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता जो परमेश्वर को स्वीकार्य योग्य हो। आप आधार्मिकता से धार्मिकता नहीं पैदा कर सकते। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व समाज की पूरी परिधि पर कार्यान्वित है। एक गिलन गंदे पानी को कई गिलन साफ पानी मिलाने से शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत एक बूंद गंदा पानी समस्त शुद्ध पानी को संक्रामक बना सकता है। चेचक से पीड़ित बालक स्वस्थ बालक के संपर्क में आने से स्वस्थ नहीं बनता, परंतु स्वस्थ लड़का चेचक पीड़ित लड़के के संपर्क में आने से रोगी बन जाता है। एक मसीही संसार में घुल मिलने से और पाप से खेलने से दूषित बनता है। हमें यह विचार कहां से घुस गया कि मसीही नशीली वस्तुओं का सेवन, मद्यपान और रात्रि क्लब में डांस पार्टी आदि में संभागी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि खोए हुए लोगों को पाने के लिए उनके स्तर के जीवन में उतरना जरूरी है। भला ऐसा करने से उन्हें सफलता मिली? जी नहीं, वे स्वयं भी दूषित होकर उनके ही जैसे पापों के भागीदार बन गए। नए नियम की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। यहूदा 23 में हम पाते हैं, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हुआ है। मित्रों, पाप के साथ घुल मिल जाने से बड़ी कोई और गलती नहीं होगी। हमें हर प्रकार से दूषित होने के प्रति सतर्क रहना होगा। एक इसराइली को सदैव इस बात या महान सिद्धांत को याद दिलाया गया, जब भी मार्ग पर उसे एक मरा कुत्ता अथवा मरा भालू पड़ा दिखाई दे तो उसे उसको उठाकर ले जाना अथवा छूना किसी भी भाग को लेने की मनाही थी। उसे एक भी हड्डी अथवा खाल को प्रयोग नहीं करना था। यदि भूल से भी अशुद्ध पशु की लोथ से उसका स्पर्श हुआ तो उसके सारे वस्त्र को धोना तथा दिन के अंत तक अशुद्ध रहना था। मित्रों, इनमें हमारे लिए अनेकों आत्मिक सबक हैं या सीख हैं। मसीह के छुटकारे के द्वारा एक मसीही पवित्र किया गया तथा उसे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए, परंतु प्रत्येक जन इस संसार में चलते हुए दूषित हो सकते हैं। अभी भी हमारे अंदर पुराना स्वभाव है, और जब तक इस शरीर को छोड़कर न चले जाएं, अर्थात मृत्यु में प्रवेश करें, तब तक पाप की उपस्थिति से बच नहीं सकते। इसके बाद पूर्णतः पवित्र बन जाएंगे। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 11 अध्याय उसके 29 से 31 पद में लिखा हुआ है, और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान। सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। मित्रों, हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि ये जीव जंतु जो हैं धरती पर या इसके भीतर पाए जाते हैं उन्हें सामान्य स्थानों पर रहना चाहिए, परंतु इसराइली लोगों को उनसे दूर रहने को कहा गया है। एक छुछुंदर की लोथ एक हाथी की लोथ के बराबर ही दूषित कर सकती है। इसे स्मरण कराया गया है कि वह पतित अर्थात अशुद्ध सृष्टि में निवास कर रहा है, और छोटे पापों की भयंकरता परमेश्वर के सामने बड़े पापों से कम नहीं होती। शहतीर व राजकनिका ईश्वर के समक्ष एक बराबर है। छोटे पाप भी पाप हैं और उनसे बचना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक के 11 अध्याय और उसके 32 से 36 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र क्यों न हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। मित्रों, अब खाना पकाने के स्थान में जाते हैं। उस समय के रसोई घर में प्रवेश किसी व्यक्ति के लिए सामान्य स्थान में प्रवेश करके किसी बर्तन में गिरकर मर जाना था। किसी मिट्टी के बर्तन को तोड़ना और पानी या अन्न या कुछ भी जो उसमें हो उसे फेंक देना, एक तांबे के बर्तन को मांजना। ध्यान दीजिए, ईश्वर अपने लोगों को भोजन पकाने परोसने में भी शुद्धता सफाई का ध्यान सिखाते हैं। वह उन्हें सफाई का एक सबक सिखाता है और प्रत्येक बर्तन उसके लिए शुद्ध है और उसे शुद्ध बने रहना है। मूसा की व्यवस्था में स्वच्छता इस व्यक्ति से सबसे निकट है और इसी सिद्धांत को सभी घरेलू बातों में लागू करना था। परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रदूषण और संक्रामकता से सुरक्षा प्रदान की। यदि कोई लोथ झरने या झील में गिर जाता है तो सारा जल अशुद्ध नहीं ठहरता, वह बहुत स्वच्छ व विशाल था। मित्रों, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि प्रभु यीशु जीवन के जल के सोते हैं? वह किसी पापी या रोगी, कोढ़ी या स्त्री मासिक धर्म से हो, इनके संपर्क में आने से दूषित नहीं होता। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मित्रों, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन की जल अर्थात जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7:37-38 में हम इसे पढ़ते हैं। इसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 11:37-38 लिखा है, और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे, पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। अब हम रसोई से निकलकर खेत और खाद्यान्नों की ओर जाते हैं। सूखा बीज बोने से पहले अशुद्ध लोथ के संपर्क से दूषित नहीं होता, परंतु यदि वह बीज गीली हो जाए और उसके ऊपर के छिलके या कवच में छेद हो जाए और उसके अंदर पानी चली जाए तो वह अशुद्ध ठहरता है। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे को कवच या शास्त्र की आवश्यकता होती है। हमें आदेश मिला है इफिसियों के पत्री 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आइए हम अब आगे देखते हैं शुद्ध पशुओं की लोथ से संपर्क। लय व्यवस्था की पुस्तक 11:39-40 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर जिन पशुओं को खाने की आज्ञा तुमको दी गई है यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। मित्रों, कोई भी शुद्ध पशु स्वयं मर जाए अथवा रोग से मर जाए तो वह अशुद्ध होता है। मलाकी की पुस्तक 1:8 के अनुसार परमेश्वर ने अंधे पशु को बलि करने के लिए मना किया है, साथ में रोगी और लंगड़े पशु को भी। परमेश्वर कभी भी द्वितीय स्थान की भेंट नहीं चाहता या हम में से भी त्यागे हुए को स्वीकार नहीं करेगा। लय व्यवस्था की पुस्तक 11:41-43 में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब प्रकार की पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व चार पांव के बल चलते हैं व अधिक पांव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना। मित्रों, प्रत्येक वस्तु जो धरती पर रेंगती या पेट के बल चलती है वह अशुद्ध है। परमेश्वर इसका कारण देता है कि वे उनके साथ अपने को अशुद्ध न करें। तब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 11:44-45 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकालने आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मित्रों, मनुष्य के पतन के साथ सारे रेंगने वाले जीव जंतु अशुद्ध ठहराए गए जो उसके प्रतिनिधि के रूप में थे। जब सांप श्रापित हुआ तो उसे पेट के बल धरती पर रेंगना पड़ा। अब हम आगे और बढ़ते हुए देखते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण पवित्र परमेश्वर द्वारा। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 46 और 47 पद में लिखा है, पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। मित्रों, परमेश्वर ही है जिसने शुद्ध और अशुद्ध में अंतर किया। छोटी छोटी बातों में पवित्रता जरूरी है। ईश्वर के जन होने के कारण वास्तविक परीक्षण यही है। परमेश्वर के लोगों के जीवन की अग्नि परीक्षा भी यही है। उसका कहना है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रिय मित्र, आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप इस दूषित संसार में परमेश्वर के साथ व उसमें चलेंगे अथवा अपने जीवन में अपने तरीके से चलेंगे। इस शुद्ध एवं अशुद्ध वस्तुओं के अध्याय में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक या सीख यही है। आज निर्णय मुझे और आपको लेना है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस संसार की ओर अपने दृष्टि को उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी गंदगियां हमारे जीवन में, हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फैसला आपको लेना है, क्या आप परमेश्वर के सम्मुख गंदगी में होकर आ सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए आपको पवित्र बनने की आवश्यकता है। और पवित्र आप कैसे बनेंगे? आप उसके पास आकर अपने गलतियों की माफी मांगकर आप उसके निकटता में आ सकते हैं। यह आपके लिए अवसर है। यदि आप चाहें तो आज इसी वक्त आप उसे पुकार सकते हैं। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने अवश्य ही अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।